हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम के वक्त निमानी हाउस में अजीब सी हलचल मची हुई थी। माधवी और राधिका, जो आराम करके नीचे हॉल में आए थे, उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखा, क्योंकि उन्हें इस हलचल की कोई खबर नहीं थी। माधवी ने एक सर्वेंट को रोकते हुए कहा, किस चीज़ के लिए डेकोरेशन हो रही है? कोई फंक्शन है क्या? अभी तो दिवाली में बहुत वक्त है, इतनी जल्दी लाइट्स लगाने की क्या ज़रूरत है? सर्वेंट ने जल्दी से कहा, वो हमें छोटी मालकिन ने कहा है, उन्हें किसी फंक्शन के लिए डेकोरेशन करवानी है। अब फंक्शन क्या है वो उन्हीं को पता है, हमें बस डेकोरेट करने के लिए कहा गया है, और ये दिवाली के लिए नहीं है। उसकी ये बात सुनकर माधवी ने हम्म कहा, और वो सर्वेंट फिर से अपने काम में लग गया। माधवी तेज कदमों से चलती हुई घर के बाहर गई, जहाँ गार्डन में निवेदिता किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मैंने कहा ना, मुझे 3 लेयर्स वाला ही केक चाहिए, और वो आज रात 8 बजे से पहले निमानी हाउस पहुंच जाना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों की बेकरी बंद करवा दूंगी, निवेदिता ने किसी से गुस्से में कॉल पर कहा। फिर वो कॉल कट करके मुड़ी तो देखा सामने माधवी और राधिका आंखें छोटी किए खड़ी थीं। माधवी ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए कहा, ये सब किस लिए कर रही हो? क्या तुम्हारी किसी बहू का बर्थडे है? क्योंकि बाकी सबके बर्थडे तो मुझे पता है, और वो अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं है। निवेदिता ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जो भी है आपको जल्दी पता चल जाएगा, ये एक सरप्राइज पार्टी है मेरी बड़ी बहू के लिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उदास है तो मैं उसे बस एक छोटी सी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। इतना सब कुछ हो गया है, किसी का मूड लाइट नहीं हुआ है, हो सकता है ये छोटी सी सरप्राइज पार्टी सबका मूड थोड़ा ठीक कर दे। इतना बोलकर निवेदिता वापस घर के अंदर जाने लगी। राधिका ने धीरे से कहा, खेलो, यहाँ तो खराब मूड के लिए भी सेलिब्रेशन पार्टी रखी जाती है, लगता है काफ़ी अमीर हो गई है निवेदिता ने मानी। माधवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ अच्छी बहू मिल गई है, इस बात का घमंड होगा इसे। राधिका ने कहा, अरे फिर से, आपकी बहू भी कुछ कम नहीं है, मुझे तो अच्छी लगती है, बिना बात के किसी से लड़ती नहीं है, बस थोड़ी चुप चुप सी रहती है। राव्या को याद करके माधवी ने मुंह बनाते हुए कहा, वो भी अनाही के पीछे पागल है, पता नहीं अनाही ने उसे क्या जादू कर दिया है, उसके परेशान होते ही वो भी कल से मुंह फुलाई ही घूम रही है। वहीं दूसरी तरफ अनंत और राव्या फिलहाल अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्हें एक 2 BHK अपार्टमेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और दोनों ही अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे थे एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाने की। अनंत ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन राव्या की तरफ करते हुए कहा, देखो स्वीटहार्ट, ये लास्ट ट्री मुझे अच्छी लग रही है, इससे ज़्यादा अच्छा मैं कुछ नहीं सोच सकता हूँ। राव्या ने गौर से पूरी डिज़ाइन को देखा और फिर थम्स अप दिखाते हुए कहा, मुझे भी अच्छी लग रही है, अभी इसको ड्रॉ करो और फिर अपने आदमियों को भेज दो, जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि हमने एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, तभी हमारे पास नए प्रोजेक्ट आएंगे। अनंत चेयर पर पीछे लेटते हुए कहा, सुबह से काम करके मेरी तो कमर अकड़ गई है। राव्या ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं कॉफ़ी मंगवाती हूँ। इतना बोलकर राव्या अपनी चेयर से उठी और फिर कॉल करते हुए बालकनी की तरफ चली गई। उसके जाते ही अनंत ने एक अंगड़ाई ली और चेयर से खड़ा हुआ। तभी उसकी नज़र कैलेंडर पर गई, जहां एक डेट मार्क की गई थी, और ये डेट उन दोनों की कोर्ट में जाने वाली डेट थी। उसे देखकर एक पल के लिए अनंत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दिवाली के दूसरे दिन उन दोनों को डाइवोर्स पेपर फाइल करना था। अनंत ने बेचैनी से अपने होंठ दबाते हुए अपने मन में कहा, मुझे बुरा क्यों लग रहा है? अभी तो हमारे बीच कुछ हुआ भी नहीं है, और ना ही ये इतनी सुंदर है कि मुझे इसकी तरफ अट्रैक्शन हो। इसके बावजूद जब भी मैं इस कैलेंडर को देखता हूँ, मेरी धड़कनें बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है इस दिन मेरी ज़िंदगी ही खत्म होने वाली है। वो इतना बोल ही रहा था कि बालकनी से मुस्कुराते हुए राव्या बाहर आई। उसने कहा, बस 5 मिनट में आपकी कॉफ़ी आ जाएगी मिस्टर निमानी, उसके बाद काम पर लग जाना वापस, और मुझे भी फिर किचन में हेल्प करनी है, आपकी मॉम की परफेक्ट बहू नहीं बन पा रही हूँ मैं, उन्हें चाहिए कि मैं अनाहिदी की तरह घर का काम भी करूं और साथ में आपके प्रोजेक्ट में भी हेल्प करूं, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मुझसे संभाला नहीं जा रहा है इतना प्रेशर। इतना बोलकर वो फिर से सोफे पर बैठ गई और अपना फ़ोन चलाने लगी। वहीं अनंत को जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया, वो तो अभी भी उस कैलेंडर की डेट के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद ही उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ और एक सर्वेंट उन दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आई। राव्या ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और फिर कॉफ़ी लेकर अनंत के पास आई। उसने एक कॉफ़ी कप अनंत के हाथ में रखते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर निमानी, ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, यू नो, अभी तो हम हर तरीके के पार्टनर हो गए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानी आपको पता है, तो आप भी अपनी परेशानी शेयर करने में शर्माए मत, क्योंकि शर्माना तो लड़कियों का काम है, लड़कों का नहीं। अनंत ने एक कॉफ़ी का घूंट करते हुए कहा, तुम क्या कह रही थी थोड़ी देर पहले? ये सुनकर राव्या ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मतलब आप सुन भी नहीं रहे थे मुझे, ऐसा किसके बारे में सोच रहे थे? कौन है इतना खास आपके लिए जिसके बारे में सोचने पर बाकी दुनिया जैसे ब्लर हो जाती है आपकी आंखों के सामने से? उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर अनंत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी माँ, मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था, तुम बताओ ना क्यों परेशान हो? राव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बोल रही थी कि मुझे किचन में भी जाना है आपकी मॉम की परफेक्ट बहू बनने के लिए, और उस परफेक्ट बहू का नाम है अनाहिदी। मुझे उनके जैसा बनना है और उसके लिए खाना बनाना बहुत ज़रूरी है, और आपको तो पता ही है मैं कैसा खाना बनाती हूँ, और उसमें परफेक्शन लाने के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अनंत ने कॉफ़ी घूंट भरते हुए कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम सिर्फ मेरे साथ काम करना चाहती हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, और अगर तुम चाहती हो मॉम से मैं इस बारे में बात करूं तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राव्या ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है मुझे परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं, और खबरदार जो कुछ ऐसा कहा वरना तो मैं उनकी नज़रों में कामचोर बहू बन जाऊंगी। पता नहीं मनाहिदी कैसे ऑफिस, घर, होल तो फैमिली सब कुछ संभाल लेती हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बहुत ही नालायक इंसान हूँ। अनंत ने गुस्से में कहा, तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि तुम लायक हो या नालायक, तुम्हें क्या पता दुनियादारी का, तुम जैसी हो अच्छी हो, ऐसी ही रहना, कोई ज़रूरत नहीं है खुद को बदलने की। ये राव्या के लिए कुछ नया था, हर वक्त उसके अंदर कमी निकालने वाला उसका पति अभी उसकी तरफदारी कर रहा था। राव्या ने मुस्कुराकर कॉफ़ी का घूंट भरा और फिर एक्साइटेड होकर बोली, मेरे कानों को बहुत अच्छा लग रहा है, करिए मेरी तारीफ और करिए, मैं सुन रही हूँ, आप शादी के बाद पहली बार कुछ अच्छा बोला है और ये सुनकर मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना मैं बता नहीं सकती, चलिए चलिए तारीफ करिए, शुरू हो जाइए इससे पहले कि आपका मूड चेंज हो जाए। उसका ये एक्साइटमेंट देखकर अनंत ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं बस इतना ही मूड था मेरा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर सकता हूँ वरना मेरे मुंह में छाले हो जाएंगे और मुझे अपने मुंह की बहुत फिक्र है।
ये सुनकर राव्या ने गुस्से में कहा, हाँ मुझे पता ही था कुछ ऐसा ही होगा, चलो अब बहुत हो गई रेस्ट, काम करो जाकर।